सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवताहूणं कम्मठजनियवेण वहि समुत्तिन्नये जिनेणमिं वेण महाहियारं विविहियारं परोवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें अभी हम चूलिका देख रहे हैं और पृष्ठ संख्या 208 पर आ गए हैं। पहले तो हमने स्थितिबंध स्थान देखे, आबादा स्थान देखे और अभी संक्लेश स्थान और विशुद्धि स्थानों की बात चल रही है। देखो, समय सार में तो हमने वो 50 से 55 गाथाओं में तो बहुत सारे नाम देखे ना, मैं बंध स्थान नहीं हूँ, ये संक्लेश स्थान नहीं हूँ, विशुद्धि स्थान नहीं हूँ, वो क्या है वो अभी बात पता चलेगी। तो यहाँ कल देखा था कि विशुद्धि स्थान या संक्लेश स्थान किसको कहना, ये विशुद्धि किसको कहना और संक्लेश किसको कहना। तो कहते जिन परिणामों के कारण साता वेदिनी आदि शुभ प्रकृतियाँ बनती है उसको विशुद्धि कहते हैं, और जिनसे असाता आदि अशुभ प्रकृतियाँ बनती है उसको संक्लेश कहते हैं। उसके जो अलग अलग कषाय के उदय हो गए अलग अलग विशुद्धि और संक्लेश के, उन स्थानों को विशुद्धि स्थान और संक्लेश स्थान कहते हैं। अब यहाँ ये प्रश्नोत्तर चलेगा, शंका समाधान 208 पृष्ठ पर नीचे वाली शंका। शंकाकार पूछता है, बढ़ती हुई कषाय को संक्लेश और हीन होती हुई कषाय को विशुद्धि क्यों नहीं स्वीकार करते? ये संक्लेश अलग है और विशुद्धि अलग है, तो बढ़ने वाले कषाय वो संक्लेश कहो, कम होते हुए उसको विशुद्धि कहो। तो कहते नहीं, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर संक्लेश स्थानों और विशुद्ध स्थानों की संख्या के समान होने का प्रसंग आता है। परंतु कल हमने देखा था ना, संक्लेश स्थान तो असंख्यात बहुभाग प्रमाण है पूरे टोटल कषायों में से, और विशुद्धि के स्थान जो है वो असंख्यात वा भाग है। कारण यह कि जघन्य और उत्कृष्ट परिणामों के क्रमशः विशुद्धि और संक्लेश का नियम देखा जाता है, तथा मध्यम परिणामों का संक्लेश अथवा विशुद्धि के पक्ष में अस्तित्व देखा जाता है। ये कषाय के जो अलग अलग स्थान है उसमें संक्लेश यहाँ नीचे और ऊपर का ना, जघन्य और उत्कृष्ट का, परंतु संक्लेश और विशुद्धि स्थानों में संख्या की अपेक्षा समानता नहीं है। जघन्य की ओर संक्लेश बताए ज्यादा है और ऊपर संक्लेश कम होते चले जाते हैं, और ऊपर हमने देखा था अधिक स्थिति वाले उसका अलग उल्टा प्रोपोर्शन था। तो कहते हैं परंतु संक्लेश और विशुद्धि स्थानों में संख्या की अपेक्षा समानता है नहीं, क्योंकि संक्लेश स्थानों की अपेक्षा विशुद्धि स्थान नियम से स्तोक है, इस परंपरा से प्राप्त गुरु के उपदेश से विरोध आता है। अथवा उत्कृष्ट स्थिति में विशुद्धि स्थान थोड़े और जघन्य स्थिति में वे बहुत होते हैं। हमने देखे थे अधिक स्थिति बनती है, उत्कृष्ट स्थिति यानी ज्यादा स्थिति बनती है, तो वहां विशुद्धि के स्थान थोड़े हैं और जघन्य स्थिति बांधने वाले के परिणामों में विशुद्धि के स्थान ज्यादा है। इस गुरु के उपदेश से जाना जाता है कि हानि को प्राप्त होने वाली कषाय के उदय स्थानों के विशुद्धता संभव नहीं है। फिर शंका, सम्यक्तोत्पत्ति में साता वेदिनी के अध्वान की प्ररूपणा करके पश्चात संकलेश्वर विशुद्धि की प्ररूपणा करते हुए व्याख्यानाचार्य यह ज्ञापित करते हैं कि हानि को प्राप्त होने वाले कषाय के उदय स्थानों की ही विशुद्धि संज्ञा है। हमने प्रथमोपशम सम्यक्त का प्रकरण बहुत विस्तार से यहाँ पढ़ा है ना, पंचलब्धि पुस्तक में भी, तो उसमें भी ये हमने लिया था विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में। तो विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में प्रश्न भी ऐसा उठाया था कि सातवें नरक के नारके को भी प्रथमोपशम सम्यक तो होता है और वहां तो कृष्ण लेशा होती है, तो वहां विशुद्धि कैसे समझना। तो वहां जो तीव्र संकलेश है वो कम हो गए उसी को वहां विशुद्धि कहा है। तो सम्यक्तो, जब सम्यक्तो की उत्पत्ति का जो प्रकरण है उसमें तो घटने वाले संकलेश को विशुद्धि लब्धि में स्वीकार कर लिया है। तो समाधान, ऐसी आशंका होने पर उत्तर देते हैं कि वहां पर वैसा कहना ठीक है, वहां तो कह सकते हैं, परंतु ये जो सामान्य प्रकरण चल रहा है संकलेश और विशुद्धि का, वहां वैसा नहीं कहेंगे, क्योंकि दर्शन और चारित्र मोह की क्षपणा और उपशामना में, यानी जहां दर्शन मोह की क्षपणा चल रही है, चारित्र मोह की क्षपणा चल रही है या उपशमना चल रही है, पूर्व समय में उदय को प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकों की अपेक्षा, यानी वहां जो अनुभाग स्पर्धकों का उदय चल रहा है, कौन से अप्रशस्त कर्मों के, अभी हम देखते हैं ना, जो पहले समय में जितना अनुभाग का उदय है, द्वितीय समय में क्या होता है, अनंत गुणा घाटी यानी अनंतवा भाग हो जाता है। तो कहते पूर्व समय में उदय को प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकों की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुभाग स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न हुए कषायोदय स्थान के विशुद्धपना स्वीकार किया गया है। वहां प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा घटता चला जाता है अनुभाग, किसमें, अप्रशस्त प्रकृतियों में, उसी को वहां विशुद्धपना कहा है। परंतु यह नियम, यानी वो सम्यक्तोत्पत्ति यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व का बात हो या अन्य भी कोई बात हो, तो उसमें तो वो स्वीकार है, परंतु यह नियम संसार अवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि वहां छह प्रकार की वृद्धि व हानियों से कषाय उदय स्थान की उत्पत्ति देखी जाती है। ये षडगुणी वृद्धि हानि वहां होती है। षडगुणी क्यों कहा, क्योंकि अनुभाग में अनंत चलता है, अन्यत्र जहां असंख्यात की संख्या आती है योग आदि वगैरह में, तो उसमें तो हम चार वृद्धि हानि देखते ना, चतुस्थान पतित, अब यहाँ षट स्थान पतित, यानी अनंत भाग वृद्धि या हानि इस तरह से। संसार अवस्था में यानी इन बातों को छोड़कर, दर्शन मोह चारित्र मोहिनी की क्षपणा या उपशमना इनकी बात छोड़कर, अन्य अवस्था में, वो संसार अवस्था में, शंका, संसार अवस्था में भी अंतर्मूर्त काल तक अनंत गुणहीन क्रम से अनुभाग स्पर्धकों का उदय है ही, यानी ये मोह की क्षपणा या उपशमना उसको छोड़ दो तो भी अन्यत्र भी अंतर्मूर्त तक तो ऐसा पाया जाएगा, ऐसे पूछना है उसका। समाधान, संसार अवस्था में भी उनका उदय बना रहे वहां भी उक्त स्वरूप का आश्रय करके विशुद्धता स्वीकार की गई है, परंतु यहां अनंत गुणहीन स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न कषायोदय स्थान को विशुद्धि नहीं ग्रहण किया जा सकता, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की विवक्षा नहीं है। विशिष्ट अपेक्षा सहित वो कथन हो सकता है, परंतु यहाँ वह विवक्षा है ही नहीं है। हम यहाँ विशुद्धि के स्थान और संकलेशों के स्थान की चर्चा कर रहे हैं। तो जघन्य स्थिति में संकलेश स्थान अधिक है और ऊपर ऊपर कम हो जाते हैं, और विशुद्धि में उल्टा है, यानी उस विशुद्धि के कारण जो स्थिति बनती है उसकी अपेक्षा से ये बात हो रही है। यहां इस प्रकार की विवक्षा है, किंतु साता वेदनीय के बंध योग्य करना ऊपर होगा ना, अनंत गुणीन पदयान उदयन उपकसाय उदयन गणपते इत्थ एवं विह विवक्षा अभावादो किंतु साध बंध पावोग प्रायोग्यन यानि योग्य किंतु साता वेदिनी के बंध योग्य कषाय उदय स्थानों को विशुद्धि और असाता वेदिनी के बंध योग्य कषाय उदय स्थानों को संक्लेश ग्रहण करना चाहिए। ये रेफरेंस निकाला उसने। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जिन कषायों के उदय में साता वेदिनी का बंध है, उन कषाय के उदय स्थानों को विशुद्धि कहा और असाता वेदिनी के बंध योग्य कषाय उदय स्थानों को संक्लेश कहा। देखो, विशुद्धि हो या संक्लेश, दोनों को कषाय कहा, कषाय उदय स्थान कहा। तो कषायों में ये दो भेद किए, संक्लेश और विशुद्धि। देखो, क्योंकि इसके बिना उत्कृष्ट स्थिति में विशुद्धि स्थानों की स्तोकता का विरोध है। अब आगे, अतएव संक्लेश स्थान जघन्य स्थिति से लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिक के क्रम से तथा विशुद्धि स्थान उत्कृष्ट स्थिति से लेकर यह कोई शब्द होना चाहिए, संकलेश स्थानानि जहन्न ठिदिप पहुड़ी विशेषाय वड्डी है, उक्कस ठिदिप पहुड़ी विशो ही ठानानि विशेषाय वड्डी है गच्छन्ति। यानी संकलेश स्थान वह है वो जघन्य स्थिति ले से लेकर उत्तर उत्तर बढ़ते हैं और विशुद्धि स्थान उत्कृष्ट स्थिति से लेकर नीचे की ओर। उत्कृष्ट स्थिति से लेकर विशेष अधिक्रम से जाते, इसीलिए विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा संकलेश स्थान विशेष अधिक है यह सिद्ध होता है। अब आगे का, पहले हमने सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तकों में संकलेश विशुद्धि स्थान सबसे स्तोक होता है ऐसा देखा था। देखो, हमने 51 नंबर के सूत्र 205 पृष्ठ पर वहां देखा ना हमने, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थान सबसे स्तोक है। अब यहां कहते हैं बादर इंद्रिय अपजत्तयस्य संकिलेश विशोहिठानानि असंखेज्य गुणानि। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों से, ये हम बहुत टाइम हुआ ना ये 51 नंबर का सूत्र पढ़कर, इसलिए फिर दोबारा अर्थ में लिखा उन्होंने, उससे, हाँ उससे ये असंख्यात गुणा। संकलेश विशुद्धि स्थानों से बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थान असंख्यात गुणे हैं। हम हमेशा एकेंद्रीय की बात देखते थे तो बीच वाले दोनों स्थान उत्कृष्ट और जघन्य सूक्ष्म अपर्याप्तक के होते, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के। ये सूक्ष्म अपर्याप्तक का जघन्य, ये सूक्ष्म अपर्याप्तक का उत्कृष्ट। बादर अपर्याप्तों में जघन्य के भी नीचे बादर का जघन्य होता था और उत्कृष्ट के ऊपर बादर का उत्कृष्ट, बादर का जघन्य था। तो यहाँ क्या कहते देखो, अभी तो वो स्थान, अभी यहाँ तो हम स्थिति के स्थान देखे, अब यहाँ स्थिति के स्थान तो कितने थे, वो संख्यात गुणा जो कुछ है या विशेष अधिक जहाँ जो विवक्षा होगी। अब यहाँ कहते एक एक में तो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, एक एक बंद के, एक एक समय के बंद के लिए अलग अलग अपने अपने स्थान ज्यादा है, तो एक कोई विशिष्ट स्थिति है तो उसके लिए असंख्यात असंख्यात स्थान होते हैं, तो इतनी स्थिति के स्थान ज्यादा हैं, तो उससे वो संकलेश स्थान असंख्यात गुणा हो जाते हैं। स्थिति स्थान भले संख्यात गुणा हो जाते हैं परंतु संकलेश और विशुद्धि स्थान असंख्यात गुणे हो जाते हैं, यही बात बताना चाहते हैं। देखो फिर पढ़ती हूँ ये सूत्र का अर्थ। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों से बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त के संकलेश विशुद्धि स्थान असंख्यात गुणे हैं। पहले हमने स्थिति स्थान कितने देखे थे, तो विशेष अधिक में या कहीं संख्यात गुणे जो कुछ है यथा योग्य। शंका, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त के स्थितिबंध स्थानों की अपेक्षा यहाँ ये पूछ रहा है। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त के स्थितिबंध स्थान संख्यात गुणे हैं ऐसा सूत्रों में कहा जा चुका है। उन्होंने सूत्र नंबर भी दिया 37-38 142 पेज पर। देखो 142 पृष्ठ पर 37 नंबर का सूत्र था, स्थितिबंध स्थान की प्ररूपणा की अपेक्षा सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त के स्थितिबंध स्थान सबसे स्तोक है। और फिर आगे वाला जो 144 पृष्ठ पर, उनसे बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त के स्थितिबंध स्थान संख्यात गुणे हैं। तो पेज 142 और 144। अभी शंकाकार ऐसा पूछता है कि ऐसा तो कहा है पहले, उसमें कहा जा चुका है। अतएव सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त के संकलेश विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त के संकलेश विशुद्धि स्थान संख्यात गुणे होना चाहिए। इसीलिए असंख्यज्य गुणानी यह सूत्रवचन घटित नहीं होता है। प्रश्न ख्याल में आए ना, स्थितिबंध स्थान तो संख्यात गुणे हैं और आप कहते तो ये भी संख्यात गुणा होना चाहिए थे। समाधान, इस शंका का परिहार कहते हैं, यदि सभी स्थितियों के संकलेश विशुद्धि स्थान सदृश ही होते तो बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त के संकलेश विशुद्धि स्थानों को संख्यात गुणा कहना उचित था। क्या कहने चाहते हैं, यदि हम मान लेते एक एक स्थिति के लिए 20-20 स्थान है मान लेते हैं और हर एक में 20-20 ही स्थान होते अलग अलग स्थितियों के लिए, तो अभी पहले 5 स्थान थे और हर एक के लिए मान लेते 20-20 हुए तो 5 स्थानों में 100 हो जाते संकलेश स्थान। अब इसके 5 के बदले अभी बादर एकेंद्रीय में 10 हो गए मान लेते, तो 20-20 का ही प्रोपोर्शन होता तो 10 × 20 = 200 हो जाते, तो संख्यात गुणा बढ़ जाते। परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ कहते हैं कि वहाँ तो स्थिति की बंद के साथ ये जो संकलेश स्थान है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। एक स्थिति के लिए इतने स्थान ऐसा नहीं, हमने देखा था जघन्य के लिए जितने लोक प्रमाण असंख्यात है, एक समय ज़्यादा हुआ तो उसके लिए वो लोक प्रमाण असंख्यात भी पल्ले के असंख्यात विभाग से अधिक हो जाते हैं, ऊपर ऊपर वो अधिक अधिक चले जाते हैं। तो यह कहते हैं कि हर एक स्थितिबंध के लिए संकलेश स्थानों की संख्या फिक्स होती, अवस्थित होती, तो ये संख्यात गुणा घटित हो सकता था। परंतु सब स्थितियों के संकलेश विशुद्धि स्थान सदृश होते नहीं है, क्योंकि वो जघन्य से लेकर ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति से लेकर, अब जघन्य से लेंगे तो हम संकलेश के स्थान ऊपर बढ़ते हैं और विशुद्धि के ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति से लेकर क्रमशः संकलेश और विशुद्धि स्थानों का गमन असंख्यात भाग वृद्धि के साथ पाया जाता है। यानी असंख्यात भाग वृद्धि होती है। देखो यहाँ आप कहेंगे संकलेश विशुद्धि स्थान असंख्यात होते हैं, तो यहाँ जो अपर्याप्त का जघन्य था उससे पर्याप्त का जघन्य है, बादर अपर्याप्त का जघन्य पर्याप्त अभी नहीं लिया है, उसमें क्या ज्यादा होगा, विशुद्धि के स्थान ज्यादा होंगे, जघन्य स्थिति बंद हो रहा है और ऊपर चले जाओ तो संकलेश स्थान बढ़ रहे हैं और असंख्यात भाग वृद्धि इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, तो वो असंख्यात गुणा में उसका उत्तर आता है टोटल। अतएव सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त के संकलेश विशुद्धि स्थानों से बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त के संकलेश विशुद्धि स्थानों को असंख्यात गुणा कहना उचित है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब यद्यपि बुद्धिमान शिष्यों के लिए असंख्यात गुणत्व का जानना सुगम है, तथापि मंदबुद्धि शिष्यों के अनुग्रहार्थ ये हमारे लिए असंख्यात गुणत्व का साधन कहा जाता है। वो असंख्यात गुणा कैसे हो सकता है उसको बताएंगे। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र स्थितिबंध स्थानों की संदृष्टि में रचना करना चाहिए। ये स्थितिबंध स्थानों की बात चल रही है। स्थितिबंध स्थान कितने हैं अभी हमने देखे थे, तो पल्ले के असंख्यात वे भाग यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के उसकी जो संख्या। पश्चात इन स्थितिबंध स्थानों की दक्षिण दिशा में बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों की रचना करना चाहिए। उनमें बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों में से सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों को छोड़कर अवशिष्ट नीचे के स्थितिबंध स्थान सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों से संख्यात गुणे हैं। ये नीचे की ओर, बीच में हमने पल्ले के असंख्यात विभाग स्थान देखे, अब ये ऐसा कहेंगे ये एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के इतने स्थान है और ये बादर अपर्याप्तक के इतने स्थान है, तो नीचे की ओर असंख्यात गुणा। स्थितिबंध स्थान जो है वो पल्ले का असंख्यात भाग है। अब कहते हैं संख्यात गुणा, देखो क्या कहते हैं, ये जो नीचे के, ये तो बादर में भी कॉमन है ये स्थान बीच वाले, नीचे के जो है इससे नीचे के वो संख्यात गुणा है। तो अवशिष्ट नीचे के स्थितिबंध स्थान सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों से संख्यात गुणे हैं, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक की विशुद्धि से बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक की विशुद्धि अनंत गुणी पाई जाती है। ये जघन्य स्थिति क्यों बनेगी, क्योंकि विशुद्धि ज्यादा है। विशुद्धि कषायों में तो अनंत गुणा में होगा, ये स्थिति कितनी बढ़ती है तो वो तो स्थिति के साथ हो, ये संख्यात गुणा हो जाएगी। स्थितिबंध के स्थान, नंबर ऑफ स्थितिबंध स्थान। देखो ये स्थिति कितनी बांधती है तो थोड़ी अधिक, ये जघन्य स्थिति से इसकी जघन्य स्थिति थोड़ी अधिक हमने देखी, विशेष अधिक देखा था, परंतु इसमें स्थानों की संख्या कितनी है तो संख्यात गुणा है। पहले हमने देखा था ना यहाँ जघन्य स्थिति ये बांधेगा और सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य स्थिति बांधेगा, वो थोड़ी अधिक है, परंतु स्थानों की संख्या अगर लेते हैं तो संख्यात गुणा है। नहीं समझे, देखो सूक्ष्म एकेंद्रिय के मान लेते, वो जघन्य स्थिति कितना बांधता है तो हम मानते 15 समय, और उत्कृष्ट स्थिति कितना बांधता है तो 35 समय। तो यहाँ स्थान कितने हुए, हाँ 20 कहो 21 कहो, हाँ 35 माइनस 15 प्लस 1। अब कहेंगे ये जो है वो इससे थोड़ा ही ज़्यादा है, ऐसा लेंगे हम यहाँ। अब यहाँ नीचे कुछ पांच या कुछ ले लेंगे, ये स्थिति जघन्य स्थिति हुई, परंतु उसके स्थान जो है एक 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 करके वो संख्यात गुणा हो जाएगी। अभी यहाँ हम बराबर ये कम लेना पड़ेगा और ये भी संख्यात गुणा करना उस पर ऊपर भी। अनंत गुणी पाए जाते हैं। देखो उनसे ऊपर के स्थितिबंध स्थान संख्यात गुणे हैं, ऊपर भी संख्यात गुणा है, ये नीचे के स्थितिबंध स्थान संख्यात गुणे हैं और ऊपर के भी संख्यात गुणे हैं, क्योंकि अब यहां क्या ज्यादा होगा, संक्लेश भी उनमें ज्यादा है। जैसे पंचेंद्रिय की तरफ बढ़ेंगे, हाँ संक्लेश भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के उत्कृष्ट संक्लेश से बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक का उत्कृष्ट संक्लेश अनंत गुणा पाया जाता है। ये संक्लेश तो स्थितिबंध स्थानों का कारण है ना। स्थितिबंध स्थान संख्यात गुणे हो गए, परंतु वहां संक्लेश की बात करेंगे, कषायों को हम नापेंगे तो वो अनंत गुणा हो जाता है, स्पर्धकों की जो अनुभाग है वो। इस प्रकार अवस्थित स्थितिबंध स्थानों में जघन्य स्थितिबंध स्थान को आदि करके उत्कृष्ट स्थितिबंध स्थान तक प्रत्येक स्थितिबंध स्थान के, ये अवस्थित यानी फिक्स, स्थितिबंध स्थानों की संख्या अवस्थित है, तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक प्रत्येक स्थितिबंध स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण जो संक्लेश विशुद्धि स्थान, ये संक्लेश नहीं, संक्लेश के स्थान, संक्लेश में तो अनंत गुणा वृद्धि वगैरह हमने देखी थी, पर ये संक्लेश का एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ऐसे जो कितने हैं संक्लेश के स्थान कितने हैं, तो एक एक के लिए असंख्यात लोक प्रमाण, विशिष्ट स्थिति बंधने के लिए कारणभूत परिणाम कितने हैं, तो असंख्यात लोक, तो वहां से आदि से लेकर क्रमशः विशेष अधिक है। हमने देखा था पल्ले का असंख्यात व भाग प्रमाण, उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और पल्ले के असंख्यात इतने स्थान जाने के बाद वो डबल हो जाते हैं, हमने देखे थे, दुगुनी दुगुनी वृद्धि होती है उसमें, विशेष अधिक है। असंख्यात नाना गुण वृद्धि शलाकाओं से सहित है, इसका अर्थ क्या है, दुगुनी वृद्धि हुई तो एक गुणहानि हुई, दुगुण हानि वृद्धि, ऐसा कहते हैं दुगुण वृद्धि भी कहते हैं उसको, तो डबल हुआ तो हम कहेंगे एक गुणहानि हुए, दो गुना से चार गुना हुआ दो गुणहानियाँ हुई, चार से आठ हुआ तीन गुणहानियाँ हुई, इस तरह से संख्यात क्या, असंख्यात गुणहानि है वहां पर, क्योंकि वो स्थानों की संख्या बढ़ती चली जाती है ऊपर, तो कहते असंख्यात नाना गुणवृद्धि, इसीलिए यहां गुणवृद्धि शब्द डाला। दुगुण दुगुण होता है ना, तो असंख्यात नाना गुण वृद्धि शलाकाओं से सहित है। दूने दूने प्रक्षेप के प्रवेशवश अवस्थित गुणहानि के बराबर है। तथा पृथक पृथक निर्वर्गणा कांडक प्रमाण खंड भाव को प्राप्त होते हैं। उनकी रचना करनी चाहिए, करनी शब्द ला लो बीच में, ऊपर देखो, पक्षे से सवर्थित गुणानि प्रमाण पुद पुद निर्वर्गण खंडय मित्त खंड भाव गदानम रचना कायो वा, करनी चाहिए। उनमें गुणहानि प्रमाण मात्र संक्लेश विशुद्धि स्थानों की बाल जनों की बुद्धि के बढ़ाने के हेतु यह संदृष्टि है, यानी एक एक गुणहानि में कितने कितने स्थान हो गए संक्लेश विशुद्धि के, तो ऊपर जो संदृष्टि लिखी है ना, वो बादर एकेंद्रिय अपजत की संदृष्टि है, यहां लिखा है आड़े, देखो ये दिख रहा है वो साइड में जो लिखा है, ऐसा बादर इंद्रिय अपजत्त संदिठि, राइट साइड में जो लिखा है 1200 और 25600 उसमें क्या लिखा, ऐसा सुहम इंद्रिय अपजत्त संदिठि। अब यहां देखो बादर एक इंद्रिय में 100 यानी नीचे की गुणहानि में 100 है स्थान, फिर 200 400 800 1600 3200 6400 ऐसे बढ़ते 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 ऊपर देखो 3276800 तक पहुंच गई संख्या, दुगुना दुगुना हुई ना, दुगुनी दुगुनी वृद्धि। अब ये इसी में बीच वाले कुछ स्थान है ना 12800 और 25600, ये सूक्ष्म एकेंद्रीय के, तो सूक्ष्म एकेंद्रीय के इतने हैं, जघन्य के इतने, उत्कृष्ट के इतने, और उसके नीचे की ओर बादर के हैं, ऊपर की ओर भी बादर के हैं, हमने देखिए असंख्यात गुणा नीचे स्थितिबंध स्थान संख्यात गुणा होते हैं और संक्लेश स्थान असंख्यात गुणा हो जाते हैं। ये संक्लेश विशुद्धि स्थानों की संदृष्टि है। देखो अब क्या कहते हैं, दूना दूना हो जाता है ना, नंबर ऑफ संक्लेश के स्थान, अनुभाग भी नहीं लेना इसमें, अनुभाग तो अनंत गुणा हो जाएगा। जैसे देखो अभी हमने आपको थोड़ा याद करो वो करणान योग का, ये जो पंच लब्धि में हमने करण लब्धि के परिणाम में अध प्रवृत्त करण की बात जहां ली थी, वहां क्या होता है एक एक समय में कितने परिणाम, अभी उसके साथ कंपेयर करना है ना, इसलिए पहले उसकी बात उठाएंगे फिर इसको समझाएंगे। एक एक समय के परिणाम अलग अलग है, वहां भी असंख्यात लोक प्रमाण एक समय में परिणाम होते हैं, तो हम वहां हमने 162 मान लिए थे। दूसरे समय चार परिणामों की वृद्धि होती है, सभी परिणाम अपने अपने अनंत गुणे होते हैं वहां पर, तो चार की वृद्धि होकर 166 होते हैं, फिर और चार की वृद्धि होकर 170 होते, 174 होते, इस तरह से चार चार की वृद्धि हुई। अब ये 162 में ही हम ग्रुप बनाएंगे, चार हमने खंड किए थे तो उसमें हमने 39, 40, 41 और 42 ऐसे देखे थे, ये अलग अलग परिणाम है ना, यानी 139 तक, फिर ये 40 से आगे 79 तक 40 होते, उनकी संख्या 40 है, ये इतने ग्रुप हुए। अब इसके अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ेगी और ये इस ग्रुप के समान हो जाएगी, तो 39 वाला जो ग्रुप है वो 40 वाले ग्रुप जैसे हो जाएगा, फिर 41 और 42। तो ये जो 42 है किसी के चौथे समय में है और किसी के पहले ही समय में है, तो चार समयों तक जो समानता है उसको कहते हैं निर्वर्गणा कांडक। तो चार समय तक समानता है तो इसके चार खंड किए हमने, ये जो 39, 40, 41, 42 ये जो ग्रुप चार बनाए ना, तो चार खंड किए। तो ये वाक्य का भी देखो इस पर घटित करेंगे फिर अपने चालू विषय पर लगाएंगे। यहाँ क्या कहते हैं, पृथक पृथक निर्वर्गणा कांडक प्रमाण खंड भाव को प्राप्त होते हैं। यह निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण चार है, उतने ही खंड हम आड़े अनुकृष्टि रचना करने के लिए उतने ही खंडित करेंगे, उनकी रचना करनी चाहिए इस तरह से रचना। अभी अपना विषय क्या चल रहा है, स्थितिबंध स्थान, स्थितिबंध स्थानों के साथ संक्लेश के परिणाम, तो जघन्य के साथ, जघन्य स्थितिबंध के साथ असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, अभी हम उसका ही पहले वाली संदृष्टि लेंगे। तो यहाँ 162 संक्लेश के स्थान है, संक्लेश विशुद्धि के स्थान 162 है, जघन्य के प्लस एक समय वाली जो ऊपर की स्थिति है उसके परिणाम 166 है, परंतु इसमें से ये पुनरुक्त होते हैं, समझो इसके इतने हैं तो इसके और बढ़ जाएंगे, ऊपर और बढ़ जाएंगे, यानी वो 170 हो गए, 174 हो गए, इस तरह से। तो ये बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, तो ये निर्वर्गणा कांडक आदि रचना करनी चाहिए बता रहे। उनमें गुणहानि प्रमाण मात्र संक्लेश विशुद्धि स्थानों की, क्या कहते हैं, गुणहानि प्रमाण मात्र संक्लेश विशुद्धि स्थान, एक एक गुणहानि में कितने संक्लेश विशुद्धि स्थान होगी उसकी बात है। गुणहानि प्रमाण मात्र ने ये जो दुगुनी हो जाती है, अब मान लेते हैं 100, अभी यहां तो नहीं बताया, 162 बढ़कर दुगुना हो जावे, दुगुनी वृद्धि हुई ना, उतने स्थान जाएंगे तो उससे भी दुगुना हो जाएगा, तो यहां उसके बदले ने 100 लिए, जहां तक दुगुने होते वहां तक सभी संक्लेश स्थानों की टोटल कितनी है, तो 100 है। दूसरे गुणहानि में कितने स्थान हो जाते हैं, टोटल 200 हो जाते हैं, इस तरह से ये हमें समझाने की, एक एक गुणहानि की बात उन्होंने उठाई है। देखो उनमें गुणहानि प्रमाण मात्र संकलेश विशुद्धि स्थानों की, यानी एक गुणहानि में कितने संकलेश विशुद्धि स्थान है उसकी, बालजनों की बुद्धि के बढ़ाने के हेतु यह संदृष्टि है। वो भी हमको नहीं समझ रहे क्या? तो यहाँ एक एक स्थान के नहीं बताए, एक एक गुणहानि के टोटल स्थानों की संख्या 100 है, फिर 200 हो जाती है, फिर 400 हो जाती है, इस तरह से। शंका, अधस्तन गुणहानि के परिणामों की अपेक्षा उससे अव्यवहित आगे की गुणहानि के परिणाम दूने क्यों हैं? नीचे के परिणाम हमने कितने देखे, ये संकलेश स्थान यानी परिणामों की संख्या बता रहे हैं ना, अलग अलग परिणामों की संख्या 100 है, तो वहां 200 क्यों हो जाती है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यतने क्योंकि वो क्योंकि आ गया, अधस्तन गुणहानि संबंधी जघन्य स्थान के परिणामों से, नीचे वाले गुणहानि संबंधी जो जघन्य स्थान के परिणामों से आगे की अव्यवहित गुणहानि के जघन्य परिणाम दूने हैं। अव्यवहित यानी कंटिन्यूअस, यानी बीच में अनंतर कहेंगे तो भी चलेगा, गैप पड़े बिना। पहले अभी हमने देखे ना, एक गुणहानि में अलग अलग जो हम देखे स्थान हो गए, फिर दूसरे गुणहानि के विशिष्ट स्थान, तो जहां डबल हो जाते हैं, तो कहते हैं यहां का जो पहला है उससे दूसरे गुणहानि का जो पहला स्थान है वो डबल हो जाता है, यहां के दूसरे से यहां का दूसरा डबल होता है, यहां के तीसरे से यहां का तीसरा भी डबल होता है, तो हर एक स्थान का अगले स्थान के साथ डबल डबल हो जाता है, तो उसकी टोटल भी डबल होनी चाहिए। देखो फिर कहते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि यथा अधस्तन गुणहानि संबंधी जघन्य स्थान के परिणामों से आगे की अव्यवहित गुणहानि के जघन्य परिणाम दूने हैं, अधस्तन गुणहानि संबंधी द्वितीय स्थान के परिणामों की अपेक्षा आगे की गुणहानि के द्वितीय स्थान संबंधी परिणाम दूने हैं। अर्थ ख्याल में है ना? अधस्तन गुणहानि संबंधी तृतीय स्थान के परिणामों से अग्रिम गुणहानि संबंधी तृतीय स्थान के परिणाम दूने हैं। इस प्रकार दो गुणहानियों के अंतिम स्थितिबंध स्थान तक ले जाना चाहिए। ये हम क्या बता रहे, ये गुणहानि में कितने कितने मान लेते हैं हम, 8 स्थान है, ये 8 स्थान यानी स्थितिबंध के स्थान है, उसके अपने अपने परिणामों की संख्या तो हम यहाँ माप रहे हैं, तो यहाँ 8 जो अलग अलग समयों वाली स्थिति है उसके कारण रूप परिणाम के यहाँ कितने लिए हमने, 100 लिए। अब ये 100 का विभाजन इसमें जैसे बढ़ते हुए करेंगे, 9 10 11 12 इसकी टोटल हम करेंगे तो वो 100 हो जाएगी, ऐसे यहाँ के वो परिणाम दूने दूने हो जाएंगे। मान लेते हम यहाँ 9 है, 10 है, 11 12 13 14 ऐसे 16 तक, फिर यहाँ 9 से ये 18 हो जाएंगे, 18 20 इस तरह से। दूने हैं, इस प्रकार दो गुणहानियों के अंतिम स्थितिबंध स्थान तक ले जाना, इसी कारण अधस्तन गुणहानि संबंधी समस्त संकलेश विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा उससे अव्यवहित आगे की गुणहानि संबंधी संकलेश विशुद्धि स्थानों के दूने होने में कोई विरोध नहीं है। हम मान लेते इसमें 8 स्थान है और इसमें 8 स्थान है, तो हर एक स्थान से उसका हर एक स्थान डबल है, तो 8 की टोटल से उसके 8 की टोटल भी डबल ही होने चाहिए। हाँ। कहते प्रथम गुणहानि संबंधी समस्त अध्यवसान पुंज से, ये संकलेश विशुद्धि स्थान है ना, ये कषायों के अलग अलग स्थान, उसको अध्यवसान पुंज कहा। पूरा ग्रुप 100 का जो है यहां पर, प्रथम गुणहानि संबंधी समस्त अध्यवसान पुंज से तृतीय गुणहानि संबंधी समस्त अध्यवसान पुंज चौगुना है, वो पुंज और चौगुना बराबर करना। देखो द्वितीय जो दूसरी गुणहानि थी कितनी थी, देखो पहला गुणहानि पहले 8 स्थानों के जो पुंज जो कषाय पुंज या अधिवसान पुंज कितने थे, तो हमने 100 मान लिए, दूसरे में 200 और तीसरे में 400, तो जो 400 है वो 100 से 4 गुना हुए ना। परिणामों की संख्या की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको अध्यवसान पुंज कहा। यहां भी पहले के ही समान कारण बतलाना चाहिए। पहले के समान कारण क्या होगा? हरेक एक 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 स्थान पहली गुणहानि की अपेक्षा 4 गुना है, सो सबकी टोटल भी 4 गुना हो जाएगी। उससे चतुर्थ गुणहानि संबंधी समस्त अध्यवसान पुंज 8 गुना है, 4 का भी डबल यानी 8 गुना। यहां भी पहले के ही समान कारण बतलाना चाहिए। इस प्रकार जाते हुए देखो क्या कहते हैं, हम यहाँ नंबर ऑफ गुणहानि लिखेंगे ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, यहाँ 100 200 400 800। अब यहाँ कितने स्थान आगे गए? 3 स्थान आगे गए। 3 स्थान आगे गए तो कितना बढ़ा? 8 गुना बढ़ा। 4 स्थान आगे गए तो 16 गुना बढ़ेगा। तो 4 स्थान आगे जाना तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 16 हुए ना, 16 गुना हो जाएगी। तो यहां क्या कहते हैं, यानी जहां 16 गुना होते हैं तो वहां स्थान कितना होता है? वहां से चौथा, यानी वो उसमें 16 के अर्धच्छेद प्रमाण आगे चले जाते हैं, बराबर है? वैसे यहां कह रहे हैं, इसको समझना है, इसीलिए वो उसको ले रही मैं। तो कहते हैं, इस प्रकार जाते हुए जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाकर की बात है। 4 गुणहानियां आगे जाते हैं, पांचवी गुणहानि में आगे 4 जाना ना, उसका अर्थ पांचवी में वहां कितने गुना हो जाता है? 16 गुना होता है। तो उसमें हम कितने गुणहानियां आगे गए? 4 गुणहानियां, यानी कितने? 16 के अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियां आगे गए, तब जो वहां का अध्यवसान का प्रमाण है वो 16 गुना हो जाता है। अब यही फॉर्मूला जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियां आगे गए तो वहां कितने गुना हो जाएगा? जघन्य परिता संख्यात गुना हो जाएगा। ये सिंपल है ना? हाँ, यानी कितने गुणहानि आगे गए तो वहां जितना गुना होगा ना उसके अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानि आगे गए। देखो ये इसको फिर पढ़ते हैं। इस प्रकार जाते हुए जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाकर, यानी पहले को छोड़कर उतने आगे गए, वहां के स्थित गुणहानि संबंधी समस्त अध्यवसान पुंज प्रथम गुणहानि संबंधी समस्त अध्यवसान पुंज से जघन्य परिता संख्यात गुणा है। अभी ये समझ में आया ना क्यों है? क्योंकि प्रथम गुणहानि संबंधी एक एक स्थितिबंध स्थान के संक्लेश विशुद्धि स्थानों से विवक्षित गुणहानि संबंधी प्रथमाधिक स्थितिबंध स्थान के संक्लेश विशुद्धि स्थानों का गुणकार क्रमशः जघन्य परिता संख्यात गुणा मात्र पाया जाता है। जैसे हम 4 गुणहानियां आगे गए तो टोटल 16 गुना हो गई। टोटल के बदले हम एक एक हम मान लेते हैं 8 उसमें स्थान है, तो पहले स्थान से वहां का पहला स्थान 16 गुना, दूसरे स्थान से वहां का दूसरा स्थान 16 गुना। इस तरह से अभी हम कितने स्थान आगे गए हैं? जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण स्थान आगे गए, तो उस गुणहानि के एक एक स्थान, पहले गुणहानि के एक एक स्थान से जघन्य परिता संख्यात गुणा है, इसलिए टोटल गुणहानि के जो अध्यवसान स्थान है, टोटल स्थानों की टोटल संक्लेश विशुद्धि परिणाम, टोटल परिणाम पहले में जितने हैं हमने मान लिए 16 ये 100, तो वहां 1600 हो गए ना। ऐसे ये वो कितने गुना हुए? जघन्य परिता संख्यात गुणा हो गए, टोटल गुणहानि के परिणामों की संख्या। इसी प्रकार आगे भी जानकर गुणकार का कथन करना चाहिए। इतने ही स्थान नहीं गए, बहुत सारे आगे चले गए ना स्थान। तो जितने स्थान असंख्यात स्थान आगे चले जाएंगे, वो उसको अर्धच्छेद बनाओ, उतनी बार दो संख्या लिख के उसके अन्योन्य व्यस्त रहस्य करके उसको गुणा करो। अर्धच्छेद हमें मालूम है, और उससे दो 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 लिखकर गुणा करेंगे तो उतने गुणा हो जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त संदृष्टि को स्थापित कर उसके आश्रय से सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि वो भी हुआ है। संकलेश विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा वो वी लिखना, विशुद्धि लिख रहा है सेकंड लाइन में स्टार्टिंग में। देखो, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों का असंख्यात गुणत्व बतलाया जाता है। यथा, अभी इसको समझाएंगे। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक की नाना गुणहानी शलाकाओं में जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों का भाग देकर जो प्राप्त हो उसका विरलन कर, क्या कहते हैं, ये जितनी नाना गुणहानी शलाकाएं, जितनी शलाकाएं हैं उसमें जघन्य परिता संख्यात का भाग देना, उसका विरलन, जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों का भाग देना, क्योंकि जितनी गुणहानि है उतने अर्धच्छेद प्रमाण हम जाते हैं तो उसके जो मूल संख्या है उतने गुणा हो जाता है, तो उसका भाग देकर जो प्राप्त हो उसका विरलन कर नाना गुणहानि शलाकाओं को समखंड कर देने पर एक एक अंक के प्रति जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्राप्त होते हैं। बराबर है ना, क्योंकि हमने उसी से भाग दिया था और उसी को विरलन कर दिया। पर यहां जघन्य परिता संख्यात के अंतिम अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियों का नहीं दिख नहीं रहा, क्या कहते हैं, जघन्य परिता संख्यात के अंतिम अर्धच्छेद, जैसे हमने 16 के अर्धच्छेद किए चार, तो एक दो, दूसरा दो, तीसरा दो, चौथा दो, अंतिम अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियों का, इतने गुणहानियों का समस्त संकलेश विशुद्धि स्थान पुंज, विशुद्धि बराबर करना, एक कम विरलन राशि से गुणित जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर अधस्थन गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज से असंख्यात गुणा है, क्योंकि यहां गुणकार उत्कृष्ट संख्यात से विशेष अधिक देखा जाता है। शंका, यह कैसे जाना जाता है, उत्कृष्ट संख्या से भी वो ज्यादा है, यह कैसे जाना? समाधान, वह युक्ति से जाना जाता है। यथा जघन्य परिता संख्यात के प्रथम अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज की अपेक्षा जघन्य परिता संख्यात के द्वितीय अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों के समस्त स्थितिबंध अध्यवसान स्थान जघन्य परिता संख्यात गुणे है। जगन्य परिता संख्या के प्रथम अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज क्योंकि अधस्तन प्रथमादि गुणहानियों के अध्यवसान पुंज की अपेक्षा आगे की प्रथमादि गुणहानियों का अध्यवसान पुंज पृथक पृथक जघन्य परिता संख्यात गुणा पाया जाता है। हाँ, जघन्य परिता संख्यात प्रमाण उन्होंने ले लिए। तो हमने दो गुणा किया ना, तो जघन्य परिता संख्यात गुणा किया उसको। अब जघन्य परिता संख्यात के परिता के बाद वो कॉमा नहीं चाहिए, ये डैश नहीं चाहिए, नहीं तो उसका परिता संख्यात हो जाएगा। जघन्य परिता संख्यात के तृतीय अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों का समस्त अध्यवसान पुंज जघन्य परिता संख्यात के प्रथम अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज की अपेक्षा जघन्य परिता संख्यात के वर्ग का जो प्रमाण हो उससे गुणित है। अभी क्या कहते हैं, हमने दो गुणा कहा ना, दो गुणा, तो दो गुणा यानी जघन्य परिता संख्यात गुणा करेंगे, तो दो का दो गुणा किया यानी वर्ग किया। तो यहाँ हमने x लिया और यहाँ x इंटू जघन्य परिता संख्यात लिया, तो यहाँ कितना होता, वो जघन्य परिता संख्यात का भी वर्ग करना पड़ेगा। हमने दो गुना दो गुना दो गुना किया इसलिए हमको वो आसान लगता है, परंतु वो वर्ग की संख्या है। तो यहाँ वर्ग हुआ, देखो ये पहले स्थान में वर्ग हुआ, दूसरे स्थान में हाँ ये वर्ग का भी वर्ग हुआ, और फिर इसका घन हुआ, घन हो जाएगा ना, वर्ग इंटू फिर वो दो गुना, चार को फिर दो गुना करना उसको इस तरह। देखो यानी यहाँ दो गुना तो समझने के लिए दो गुना किया था, हर एक गुणहानि जघन्य परिता संख्यात गुणा हो जाएगी। यानी प्रत्येक गुणहानि के ये परिणाम जो है जघन्य परिता संख्यात गुणा हो गया। अब देखो हम बीच में पढ़ रहे थे जहाँ करेक्शन किया, जघन्य परिता संख्यात के तृतीय अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों का समस्त अध्यवसान पुंज जघन्य परिता संख्यात के प्रथम अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज की अपेक्षा जघन्य परिता संख्यात के वर्ग का जो प्रमाण हो उससे गुणित है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, परिणामों की संख्या, स्थानों की नहीं, स्थान तो समान है सब जगह, हाँ परिणाम बढ़ रहे हैं। तो देखो पहले में कितने गुना हुआ, ये अभी 200 लिया ना हमने, तो यहाँ से यहाँ तीसरी, यहाँ दूसरी, आगे कितने स्थान गए तो दूसरे स्थान गए, तो वहां कितने हुए, इसका वर्ग हुआ। उसके आगे गए तीन स्थान आगे गए तो क्या हुआ, ये वर्ग को पहले स्थान से गुणा किया, हाँ यानी 400 को दो गुणा किया तो 800 हो गए। यही बात यहां बताते हैं, देखो क्या कहना चाहते हैं। फिर जहां करेक्शन की वहां से, जघन्य परिता संख्यात के तृतीय अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों का समस्त अध्यवसान पुंज, समस्त लिया ठीक, जघन्य परिता संख्यात के प्रथम अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज की अपेक्षा जगन्य परिता संख्यात के वर्ग का जो प्रमाण हो उससे गुणित है। हमने देखा है चार गुणा किया ना, हमने दो को अगर जगन्य परिता संख्यात मान लिया है तो तीसरे में वो आठ हो जाता है, क्योंकि जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के दुगुणित करने पर जो प्राप्त हो उसका विरलन करके दूना कर परस्पर गुणित करने पर जगन्य परिता संख्यात का वर्ग उत्पन्न होता है। हम वो उसके डिटेल में नहीं जानेंगे, हम ये 100 का 200 का 400 का 800 वगैरह होता है उसको देखेंगे। जगन्य परिता संख्यात के द्वितीय अर्धच्छेद के बराबर गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज की अपेक्षा जगन्य परिता संख्यात के तृतीय अर्धच्छेद छेद करना तृतीय अर्धच्छेद मात्र गुणानियों का समस्त अध्यवसान पुंज जगन्य परिता संख्यात गुणा है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, द्वितीय अर्धच्छेद यानी अभी हमने देखा ना चार वाला है, 800 यहाँ हुए थे, उससे आगे वाला वो 800 का भी दो गुणा यानी 16 गुणा, यानी अपने यहाँ की भाषा में जगन्य परिता संख्यात गुणा। एक एक स्थान आगे जाएंगे तो जगन्य परिता संख्यात गुणा होगा, क्योंकि अधस्तन स्थितियों के परिणामों से उपरिम स्थितियों के परिणाम, अधस्तन स्थितियां ने अभी ये स्थितिबंध स्थानों में जो छोटी स्थिति बांधी है उससे आगे वाला जो स्थिति का परिणाम वो जो परिणाम होंगे पृथक पृथक जगन्य परिता संख्यात गुणे पाए जाते हैं। ये समझ में, एक गुणहानी में जितने संख्या है स्थितियों की उसमें जितने परिणाम है टोटल, ये हमने 100 माने तो दूसरे गुणहानी के जो स्थान है उसमें वो जगन्य परिता संख्यात गुणे हो जाते हैं, यानी अधस्तन स्थितियों से उपरिम स्थितियों के परिणाम जगन्य परिता संख्यात गुणे हो जाते हैं। पुनः अधस्तन दो खंड संबंधी गुणहानियों के समस्त अध्यवसान स्थानों से तृतीय खंड संबंधी गुणहानियों का समस्त अध्यवसान पुंज असंख्यात गुणा है, क्योंकि एक अधिक जगन्य परिता संख्यात का जगन्य परिता संख्यात के वर्ग में भाग देने पर एक अधिक जगन्य परिता संख्यात से एक खंड को प्राप्त करने पर प्राप्त हुए एक भाग से अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक पाए जाते हैं। ये उत्कृष्ट संख्यात से कितना ज्यादा है तो एक का असंख्यात भाग ज्यादा है, इतना ही वो सारा घटित करना चाहते थे। प्रथम खंड संबंधी सब गुणहानियों के समस्त अध्यवसान पुंज से चतुर्थ खंड संबंधी समस्त अध्यवसान पुंज जगन्य परिता संख्यात का घन करने पर जो प्राप्त हो उतना गुना है। हाँ, क्योंकि तीन जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों का विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करने पर तीन बार उत्पन्न जघन्य परिता संख्यात अर्थात उसका घन पाया जाता है। जगन्य परिता संख्यात गुना जगन्य परिता संख्यात गुना जगन्य परिता संख्या उसका घन। द्वितीय खंड की सब गुणहानियों के परिणामों की अपेक्षा चतुर्थ खंड का सब परिणाम पुंज जगन्य परिता संख्यात का वर्ग करने पर जो प्राप्त हो उससे गुणित है, क्योंकि दो जगन्य परिता संख्यात के दुगुणे अर्धच्छेदों का विरलन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करने पर जगन्य परिता संख्यात का वर्ग उत्पन्न होता है। ये तो दो बार जगन्य परिता संख्यात गुणा होगा तो 200 का 400 हो जाता है इस तरह से। तृतीय खंड के परिणामों की अपेक्षा चतुर्थ खंड का परिणाम सब परिणाम पुंज जगन्य परिता संख्यात गुणा है, तीसरे से चौथा, 400 से वो 800 हो जाएगा, क्योंकि एक जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां ऊपर जाकर उसका अवस्थान है। अधस्तन तीन खंड संबंधी समस्त गुणहानियों के सब परिणाम पुंज की अपेक्षा आगे का चतुर्थ खंड संबंधी परिणाम पुंज असंख्यात गुणा है, क्योंकि एक अधिक जगन्य परिता संख्यात से अधिक जगन्य परिता संख्यात के वर्ग का जगन्य परिता संख्यात के घन में भाग देने पर इस भागहार से एक अंक को खंडित करने पर लब्ध हुए एक खंड से अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक पाए जाते हैं। ये आगे आगे वो एक का कितना असंख्यातवा भाग होता है उसकी बात चल रही है। इसको नहीं भी ख्याल में आए तो कोई बात नहीं, हमने संदृष्टि में देखा है ना, 100 का, 200 का, 400 का वगैरह हो जाता है, इसी तरह से ख्याल में रखना है। यह भी कैसे जाना जाता है, कहते हैं जगन्य परिता संख्यात के वर्ग का विरलन कर। पहले उन्होंने एक एक गुणहानि की बात की, अब कहते ये दो की अपेक्षा ये कितना ज्यादा है, ये तीनों का मिलकर उससे ये चौथा कितना ज्यादा है, इस तरह से वो अलग 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 की टोटल करके आगे वाला कितना ज्यादा है उसकी बात बता रहे। तो कहते जगन्य परिता संख्यात के वर्ग का विरलन कर उसको घन को उसके घन को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति जगन्य परिता संख्यात पाया जाता है। देखो दो को अगर जगन्य परिता संख्यात मानेंगे तो उसका वर्ग हुआ चार, चार का विरलन करो और उसके घन को समखंड करके दे दो। दो का घन है आठ, आठ को समखंड करो चार में, तो हर एक के प्रति दो दो आए। बात एक ही है, हाँ, तो हाँ आगे ये पहले की सभी की टोटल से आगे वाला कितना ज्यादा है वो बताना चाहते हैं। उन विरलित अंकों में से एक एक अंक के प्रति प्राप्त राशियों में से एक एक अंक को ग्रहण करने पर जगन्य परिता संख्यात के वर्ग प्रमाण अंक पाए जाते हैं। वर्ग का विरलन किया था ना, और हर एक में से हमने एक एक लिया तो कितने अंक पाए, जितना विरलन किया था तितना, यानी कितना जगन्य परिता संख्यात इतने अंक हमको मिल गए। उन अंकों को पास में विरलित जगन्य परिता संख्यात के प्रति समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति जगन्य परिता संख्यात पाया जाता है। देखो हमने पहले क्या किया, चार को विरलन किया, आठ को समखंड करके दिया तो उसमें हर एक के प्रति दो दो आए। अब कहते चार को विरलन किया था ना, तो हर एक में से हमने एक एक अंक ले लिया, दो दो थे हर एक के ऊपर, उसमें से एक एक निकाला तो हमारे पास चार हो गए। चार मिले तो पहला जगन्य परिता संख्यात हमने विरलन कर दिया था, उस पर फिर वो चार उस पर डालो यानी दो पर डालो तो हर एक के प्रति दो दो आए, फिर एक एक के प्रति जगन्य परिता संख्यात पाया जाता है। फिर उनमें से एक एक अंक के ऊपर रखी हुई प्रत्येक राशि में से एक एक रूप के ग्रहण करने पर दोनों में से एक और एक निकाला तो दो आए, फिर तो वो भी जगन्य परिता संख्यात हुआ, जगन्य परिता संख्यात उत्पन्न होता है। पुनः उनमें से एक अंक को कम कर पास में विरलित एक रूप के प्रति देने पर उत्कृष्ट संख्यात प्राप्त होता है। एक को दे दो तो उत्कृष्ट संख्यात मिल जाएगा। पश्चात कम किए गए एक अंक को इस विरलन राशि से खंडित कर उसमें से एक एक खंड को प्रत्येक अंक के प्रति देने पर एक रूप के असंख्यातवे भाग से अधिक उत्कृष्ट संख्यात गुणाकार होता है, इसी से वह जाना जाता है। इनको इतना ही एस्टेब्लिश करना है, वो उत्कृष्ट संख्यात से आगे एक का असंख्यातवा भाग गया है। अब कहते प्रथम खंड के परिणामों की अपेक्षा पंचम खंड के परिणाम जघन्य परिता संख्यात के वर्ग का वर्ग करने पर जो प्राप्त हो उतने गुणे हैं। हमने देखा ना वर्ग का वर्ग, हाँ 16 गुना है कि 200 से कितना गुना हो गया वो, इस तरह से क्योंकि चार जघन्य परिता संख्यातों के अर्धच्छेदों को विरलित कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने पर चार जघन्य परिता संख्यातों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है। यानी चार बार जघन्य परिता संख्या आपस में गुणा करना, वर्ग का वर्ग हो गया है। इसी प्रकार यानी वो उनको अर्धच्छेद करो परस्पर गुणा करो, ऐसे में वो तो लंबा हो गया, डायरेक्ट हम उसको गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार शेष खंडों के भी गुणकार कथन पहले के ही समान करना चाहिए। एक एक स्थान में जघन्य परिता संख्यात गुणा होता है, इतनी बात ख्याल में है। जैसे हमने इस अंदृष्टि में दो गुणा देखा है। चार खंडों के समस्त परिणामों की अपेक्षा, अभी दूसरे से चौथा कितना हुआ इसे हमने देखा था, अभी पहले सबकी टोटल करो उससे वो कितना गुणा है ये बता रहे। चार खंडों के समस्त परिणामों की अपेक्षा पांचवें खंड के सब परिणाम असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि एक अधिक जघन्य परिता संख्यात से सहित जघन्य परिता संख्यात का जो वर्ग है उससे अधिक जघन्य परिता संख्यात के घन का जघन्य परिता संख्यात के वर्ग में भाग देने पर एक अंक के असंख्यातवें भाग के साथ उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक प्राप्त होते हैं। ये उत्कृष्ट संख्यात में जो बढ़ रहा है ना, तो उसको ये अपूर्णांकों में संख्या है तो वो कैसा प्राप्त होता है उसको बताया। यहां पर भी पहले के ही समान कारण बतलाना चाहिए। इसी प्रकार आगे के सब खंडों में एक अंक के असंख्यातवे भाग से अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार जानना चाहिए, क्योंकि आगे की अर्थ प्ररूपणा के प्रति पहले की प्ररूपणा बीजभूत है। पहले जो हमने प्ररूपणा की है ऐसे ही आगे आगे वैसे ही समझना। शंका, आगे का गुणकार अन्य प्रकार क्यों नहीं होता? समाधान, नहीं, क्योंकि इसके बिना गुणहानियों के अध्यवसान स्थान दुगुणे बन नहीं सकते। इसीलिए अधस्तन सब खंडों के अध्यवसान स्थानों की अपेक्षा बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के अंतिम खंड संबंधी अध्यवसान स्थान निश्चय से असंख्यात गुणे हैं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। उन्होंने क्या घोषित किया, तो नीचे के सभी स्थानों की टोटल से उसके ऊपर का जो एक स्थान है वो भी असंख्यात गुणा हो जाता है एट एनी गिवन पोजिशन। इसलिए अधस्तन सभी स्थानों की अपेक्षा ऊपर का स्थान असंख्यात गुणे होगा, ये बात बताती। शंका, उत्कृष्ट संख्यात से साधिक और जघन्य परिता संख्यात से कुछ कम इस गुणकार को असंख्यात कहना कैसे उचित है? इन्हें उत्कृष्ट संख्यात पूर्णांक समथिंग लिया तो कहते उसको असंख्यात गुणा क्यों कह रहे हो आप? ख्याल है ना? समाधान, नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात का अतिक्रमण कर, अतिक्रमण इसको पास किया ना अभी, उसके आगे चले गए, जो कोई भी संख्या हो उसे असंख्यात कहने में कोई विरोध नहीं है। अथवा दूने जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियों के द्वारा क्या कहते दूने परिता संख्यात के अर्धच्छेद, परिता संख्यात के अर्धच्छेद जितने हैं, अभी परिता संख्यात को दो गुणा करो एक बढ़ जाएगा ना उसमें, अर्धच्छेदों में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियों के द्वारा एक एक खंड प्रमाण करके असंख्यात गुणत्व को सिद्ध करना चाहिए। यानी अर्धच्छेद एक बढ़ा दो तो हो जाएगा, ऐसा कहते असंख्यात गुणा। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त संबंधी स्थितिबंध स्थानों के असंख्यात बहुभाग मात्र स्थानों के संक्लेश विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा क्या कहते हैं? बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त संबंधी स्थितिबंध स्थानों के असंख्यात बहुभाग मात्र स्थानों के संक्लेश विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा यदि ऊपर के असंख्यातवे भाग मात्र स्थानों के संकलेश विशुद्धि स्थान असंख्यात गुणे होते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? ये बादर अपर्याप्तों के स्थिति बंध स्थान कितने हैं? कुछ है, इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वहाँ कहते हैं उसके, हमने पहले क्या सिद्ध किया, नीचे के स्थानों से ऊपर का स्थान असंख्यात गुणा है। वही बात कहते हैं कि उसमें से बहुभाग स्थानों की अपेक्षा ऊपर का एक भाग स्थान असंख्यातवा भाग है ना, नीचे असंख्यात स्थान है और ऊपर एक भाग है ना, वो असंख्यातवा स्थान है। तो नीचे के सबकी टोटल से भी ऊपर का एक स्थान असंख्यात गुणा है, ये स्टेटमेंट क्या है ना। अभी आगे का हमने पढ़ा नहीं, फिर पढ़ते इसको। देखो क्या कहते हैं, बाधा एकेंद्रीय अपर्याप्त संबंधी स्थिति बंध स्थानों के असंख्यात बहुभाग मात्र स्थानों के संकलेश विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा यदि ऊपर के असंख्यात वे भाग मात्र स्थानों के संकलेश विशुद्धि स्थान असंख्यात गुणे होते हैं तो। इसका अर्थ समझ में आया? हमने नीचे के सभी स्थानों की अपेक्षा ऊपर का एक देखा, यहाँ तो बहुभागों की अपेक्षा ऊपर के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान, यहाँ के परिणाम और यहाँ के परिणाम, यहाँ के सभी परिणामों की अपेक्षा ये इसके जो परिणाम है वो असंख्यात गुणा है, ये तो एक स्टेटमेंट हुआ। तो बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों के संख्यात वे भाग मात्र सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों में जो संकलेश विशुद्धि स्थान है उसकी अपेक्षा बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के समस्त संकलेश विशुद्धि स्थान निश्चय से असंख्यात गुणे होते हैं, ऐसा सिद्ध करना चाहिए। अभी ये आसान हुआ, देखो क्या कहना चाहते हैं। ये टोटल बादर एकेंद्रीय के स्थान यहाँ से यहाँ तक और सूक्ष्म एकेंद्रीय के स्थान ये बीच में हम देखेंगे इतने ही है। कहते हैं अकेले बादर एकेंद्रियों के स्थान पूरे समझ लो तो उसके जघन्य से लेकर असंख्यात बहुभाग स्थान तक जितने स्थान है उनमें जितने संकलेश विशुद्धि स्थान है उसके अपेक्षा रिमेनिंग जो असंख्यात वे भाग मात्र जो स्थिति के स्थान है, स्थितिबंध के स्थान, उसमें जो परिणाम पाए जाते हैं वो असंख्यात गुणा है। तो सूक्ष्म एकेंद्रियों के अपेक्षा ये सभी स्थान असंख्यात गुणा हो गए, उसमें क्या नवाई? वो तो इमीडिएट सिद्ध है। पहले उन्होंने बादर एकेंद्रियों में भी नीचे के असंख्यात से ऊपर का असंख्यात वा भाग उसमें परिणाम असंख्यात गुणा है, ऐसा सिद्ध किया। तो ये सबके टोटल जो है वो सूक्ष्म के असंख्यात गुणा होगी, ख्याल है ना। अभी क्या बताना चाहते हैं, अथवा अन्य प्रकार से गुणकार का कथन करते हैं, कहते हैं आप यदि नहीं मानते हैं तो हम और बताएंगे। वह इस प्रकार है, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के जघन्य स्थितिबंध स्थान की अपेक्षा नीचे के बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थान संबंधी संकलेश विशुद्धि स्थानों की नाना गुणहानी शलाओं का उनका विरलन कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे प्रथम गुणहानी के द्रव्य को गुणित करने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक की प्रथम गुणहानी का द्रव्य होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी हम ये संदृष्टि निकालेंगे थोड़ी। और उसमें कितनी गुणहानि है उसको जरा नापेंगे, साइड में उसको नंबर देंगे, 100 वाले को 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो 25, 609, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, टोटल गुणहानियां 16 है। अब ये सूक्ष्म की कहां नंबर आते हैं, 12,800 और 25,600, ये सूक्ष्म के हैं। बादर में भी है परंतु सूक्ष्म की अपेक्षा बादर में नीचे कितने हैं, अभी नीचे की ओर नापो। 12,800 के नीचे कितने हैं, 7 है ना गुणहानियां, तो 7 गुणहानि है। अभी क्या करना है उसके साथ, हाँ, तो देखो फिर सूक्ष्म, मैं फिर पढ़ती हूँ ये वाक्य। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के जघन्य स्थितिबंध स्थान की अपेक्षा नीचे के बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थान संबंधी संक्लेश विशुद्धि स्थानों की नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर। अब नीचे कितनी शलाकाएं हैं? 7 गुणहानियां हैं, उसका विरलन कर, द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उससे प्रथम गुणहानि के द्रव्य 100 को गुणित करने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक की प्रथम गुणहानि का द्रव्य होता है। अभी 7 को आपस में ये 7 बार 2 ले लो, 6 7 कितना होता है? हाँ, 4 बार लेते तो 16 होता है ना, और 2 गुना 2 गुना 2 8 128 होते हैं। 128 गुना 100 कितना हुआ? 12 800 है ना। तो सूक्ष्म एकेंद्रीय की जो आठवीं जो हमने देखी है वहां के परिणामों की संख्या, सूक्ष्म एकेंद्रियों की पहली गुणहानि, उसकी संख्या 12800 आ गई ना। क्या किया हमने? नीचे की कितनी गुणहानि है? 7 है, 7 बार 2 2 लिखो, आपस में गुणा करो, 128 आए, उसको 100 से गुणा करो। अन्योन्य अवस्थ राशि राशि को पहले गुणहानि के गुणा करना, बराबर, नीचे की अन्योन्य अवस्थ राशि को पहले गुणहानि से गुणा करना। पश्चात ये कितना द्रव्य है? 12800 है ना अपना। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक की गुणहानि शलाकाओं का, कितनी गुणहानि शलाकाएं है? उसकी 2 है, बराबर, 2 गुणहानि है ना, एक 12800 वाली और एक आगे वाली, उससे 2 गुनी, तो 2 का विरलन करके दूना करने पर, परस्पर गुणा करने पर 2 का विरलन किया, 4 हुआ। जो प्राप्त हो उसमें से एक अंक कम कर, ओके ऊपर बिंदी देना, अवशिष्ट राशि 3 से उपर्युक्त सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक की प्रथम गुणहानि के द्रव्य को गुणित करने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संक्लेश विशुद्धि स्थान होते हैं, यानी टोटल। हमने दूसरे में कितने हो जाएंगे? 25, और उसके डबल हो जाएंगे ना ऊपर, हाँ, और उसकी संख्या टोटल करनी है तो डायरेक्ट 12800 को 3 गुना किया। समझ में आया क्या किया? तो ये टोटल स्थान आए, दोनों गुणहानियों के मिलकर टोटल स्थान आए, टोटल संक्लेश विशुद्धि स्थान आ गए, ये 38400। ये अपनी भाषा में अपने करना है तो 12800 और उसके डबल जो है 25 कितने? 600, हाँ 25600 अगर हम टोटल करेंगे तो उतनी आ जाएगी ना, 38400। पश्चात बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक की नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर, टोटल कितनी है? 16 है, विरलन कर, दुगुणित करके परस्पर गुणा करने पर, ये 16 किसका अर्धच्छेद है? पनट्टी का, तो 16 बार 2 लिखकर परस्पर गुणा करेंगे तो 65536 प्राप्त हो, उसमें से एक अंक कम करके अवशिष्ट राशि 65535 से इसी प्रथम गुणहानि संबंधी द्रव्य को, इसी ने इसी के चाहिए ना, एदेशु अच्छा पुनः इसी प्रथम गुणानि संबंधी द्रव्य को गुणित करने पर बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संक्लेश विशुद्धि स्थान होते हैं 65,535 × 100 = 65,53,500। अंतिम स्थानों की संख्या निकाल ली तो हमने कितनी दो गुना तो वो 16 बार किया ना दो गुना तो 16वें बार वो 32,768 आया था उससे और सभी स्थानों की संख्या टोटल करनी है तो क्या करना है तो दुगुनी उसको भी दुगुनित करके उसका एक कम किया उसमें से इन्हें 16 बार आपस में गुणा किया उसमें से एक कम किया और 100 से गुणा किया तो सभी की टोटल आ गई यानी 100 से लेकर ऊपर जो 32,768 है ना वहां तक के सभी की टोटल हाँ इनमें सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संक्लेश विशुद्धि स्थानों का भाग देने पर कितना आता 38,400 अभी जो संख्या आई 65,3500 / 38,400 भाग देने पर पल्ल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार प्राप्त होता है जो संख्या आएगी ना उतने गुणा ये स्थान है सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त से बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त के स्थान कितने गुणा है तो इतने गुणा हो जाएंगे क्योंकि उसका प्रमाण बादर जीवों की उपरिम गुणहानि शलाकाओं की कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि को सूक्ष्म एकेंद्रियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणित करके एक अंक से कम उसी के द्वारा अपवर्तित करने से जो प्राप्त हो उतने मात्र हैं क्या कहते हैं उपरिम गुणहानि शलाका कितनी है इसकी देखो बादर सूक्ष्म एकेंद्रीय के 8 और 9 हो गए ना उसके ऊपर कितनी उपरिम 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 वो उपरिम भी 7 है तो उपरिम गुणहानि शलाकाओं की कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी आई थी 128 उसमें से कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि को सूक्ष्म एकेंद्रियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणित करके सूक्ष्म एकेंद्रियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है 4 उससे गुणित करके एक अंक से कम उसी के द्वारा अपवर्तित करने से यानी 3 से भाग देना 4 से गुणित करना 3 से भाग देना अपवर्तित करने से जो प्राप्त हो उतने मात्र हैं इस गुणकार से सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संक्लेश विशुद्धि स्थानों को गुणित करने पर बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संक्लेश विशुद्धि स्थान होते हैं पहले हमने कैसे निकाला देखो 65,535 है ना 3500 वो 100 निकालो और 384 करके 100 तो इतनी संख्या आई लास्ट में क्या कहना है बादर जीवों की उपरिम गुणहानि शलाकाओं की कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि को सूक्ष्म एकेंद्रियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणित करके एक अंक से कम उसी के द्वारा अपवर्तित करने पर वो आगे शायद बताएंगे देखो अथवा ये इतनी आई ना अपने इतने गुणाकार उस इतने गुणा है वो अथवा सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के जघन्य स्थितिबंध स्थानों के बराबर जो बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थान हैं उनको आदि लेकर ऊपर के स्थानों को सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के स्थितिबंध स्थानों के प्रमाण से करने पर वे संख्यात गुणे होते हैं क्या कहना चाहते हैं अभी हमने देखा ना जो 12,800 वाला सूक्ष्म का जघन्य स्थान है उसके बराबर बादरों का भी स्थान होगा उसके ऊपर के बादर के जो सगरे स्थान है वो यहाँ जो हमने 38400 जो देखे उससे कितने गुना है, तो संख्यात गुना है, ऊपर के सभी स्थानों की संख्या संख्यात गुना है। अब उनमें जो प्रथम खंड के संकलेश विशुद्धि स्थान सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों के बराबर है, इनकी एक गुणकार शलाका है, यानी जो सूक्ष्म और बादर में जो कॉमन है हाँ वो एक गुणा है ना, वो एक गुणकार शलाका है। ये संकलेश दिख रहा है, संकलेश करना बराबर है, इनकी एक गुणकार शलाका है। पुनः सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक की अन्योन्य अभ्यस्त राशि 4, उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों को गुणित करने पर बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के द्वितीय खंड संबंधी संकलेश विशुद्धि स्थान होते हैं, वो 38400 को गुणित किया, कितने 50, उनको इसके वर्ग से गुणित करने पर तृतीय खंड के संकलेश विशुद्धि स्थान होते हैं। अच्छा, इसको एक यूनिट बनाया उसमें, हमने देखा ना उसके आगे आगे हम जाते वर्ग उसका घन इस तरह से, जो हम आगे आगे जाते थे इस तरह से, पश्चात उनके वर्ग से गुणित करने पर तृतीय खंड के संकलेश विशुद्धि स्थान, फिर इनके घन से उनको गुणित करने पर चतुर्थ खंड के संकलेश विशुद्धि स्थान होते हैं, इसके वर्ग के वर्ग से उनको गुणित करने पर पांचवें खंड के संकलेश विशुद्धि स्थान होते हैं, इस प्रकार अंतिम खंड तक ले जाना चाहिए। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के जघन्य स्थितिबंध स्थान से नीचे के बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों का गुणकार एक अंक का असंख्यात्वा भाग होता है, क्योंकि हम नीचे की ओर है ना, तो जहां अभी हम 12800 और 25600 टोटल 38400 है, और नीचे के सभी स्थानों की अपेक्षा वो असंख्यात गुणा होगा, क्योंकि हमने पहले घटित किया है, नीचे के स्थानों से ऊपर के स्थान थोड़े भी है फिर भी असंख्यात गुणा है, तो अगर उसके साथ अगर हम नीचे की कंपेयर करेंगे तो असंख्यात्वा भाग है। देखो अभी तक हमने क्या प्रूव किया, सूक्ष्म एकेंद्रियों के जितने उसके ऊपर जो गुणहानियां हैं बादर एकेंद्रियों की उसमें संख्यात गुणा हो जाता है और नीचे असंख्यात्वा भाग है, क्योंकि वे सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। इन सब गुणकार शलाकाओं को मिलाकर उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों को गुणित करने पर बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थान होते हैं। ये अलग टाइप से इसको प्रूव किया उन्होंने। अब इनमें सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थानों का भाग देने पर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग गुणकार प्राप्त होता है, यानी उनको यही प्रूव करना है कि सूक्ष्म एकेंद्रीय के जितने हैं उससे पल्ले के असंख्यात्वे भाग गुणा बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के संकलेश विशुद्धि स्थान है। अब इसी को संदृष्टि से समझाएंगे तो और आसान हो जाएगा, ये कल पढ़ेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो लो। अश्विन भाई।